अध्याय 14 सामाजिक चेतना। समाज और कवि के संबंधों पर काफी विवाद भी हुआ है। आलोचकों का एक वर्ग किसी कवि या लेखक की सफलता का सबसे बड़ा मानदंड उसकी सामाजिक चेतना को मानता है और इसको साहित्य के हर पहलू का अध्ययन समाज को परिपार्श्व में रखकर करना चाहता है। और ऐसी अवस्था में जब समाज में कई प्रकार की विचारधाराएं संघर्षरत हों और प्रत्येक मतवाद के मानने वाले और दूसरे को अस्वस्थ, प्रतिक्रियावादी और रूढ़ग्रस्त तथा विकास के प्रतिकूल कहते हों, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन कवि स्वस्थ सामाजिक प्रवृत्तियों का पोषक है और किसने अस्वस्थ और रूढ़ मानव मन के चित्रण में ही अपना समय नष्ट किया है। कई बार एक कवि की रचनाएँ भी मतवादों के इस कुहाजाल में पड़कर नाना प्रकार की मान्यताओं का शिकार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक युग के किसी कवि को लीजिए, उसके साहित्य के अध्ययन करने वाले किन्हीं दो आलोचकों का मत मिलता नजर न आएगा। एक ही कवि की रचनाओं को कुछ आलोचक हाथी दांत की मीनार में रहने वाला समाज से दूर और कुंठाग्रस्त व्यक्ति के दिमाग की उपज बताएंगे। उन्हें रचनाओं को दूसरे आलोचक समाज की यथातथ्य प्रवृत्तियों का आईना, स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाली और सामाजिक यथार्थ को सही रूपों में चित्रित करने वाले बताएंगे। आधुनिक युग के समसामयिक कवि को परस्पर युद्धरत आलोचकों के दाव पेचों का शिकार होना पड़ता हो या पैतरेबाजी में झटका खा जाने का अंदेशा हो तो आश्चर्य नहीं, किंतु जब यह पैतरेबाजी किसी प्राचीन कवि के भाग्य का निर्णय करने पर तुल जाती है और उस साधक कवि के तत्कालीन समाज को न देख कर अपने सामाजिक जीवन के चश्मे से देखा जाने लगता है, तब सही अर्थों में अनर्थ की परंपरा खड़ी हो जाती है। प्रसाद जी ने पिछले खेवे के सिद्धों के साहित्य को उनकी स्वच्छंद आनंदवादी प्रवृत्ति के कारण रहस्यवादी बताया। वे रहस्यवादी कवि को विवेक संतरस्त मर्यादावादी कवियों से श्रेष्ठ समझते थे। दूसरी ओर शुक्ल जी इन गुह्य साधकों को समाजद्रोही कहते हैं। राहुल संकृत्यान जैसे मार्क्सवादी आलोचक सिद्धों के साहित्य को क्रांतिकारी, रूढ़ विरोधी और नवीन चेतना से पूर्ण बताते हैं। इन परस्पर विरोधी मतवादों के घटाटोप में साधारण पाठक के लिए यह निर्णय करना भी कठिन हो जाता है कि ये कवि कैसे थे। विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहने वालों ने उन्हें समाज से बहुत दूर किसी लता कुंज में विहार करने वाला या दरबार के वातावरण में घिरे हुए संकुचित घेरे का कवि समझ लिया। विद्यापति दरबारी कवि थे अवश्य, किंतु वे अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति कम जागरूक नहीं थे। यह जो दूसरी बात है कि उन्होंने सिद्धों या निर्गुण संतों, खास तौर से कबीर की तरह समाज के एक विशेष वर्ग के प्रति उस वर्ग की मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के प्रति उग्र विरोध प्रकट नहीं किया, किंतु किसी प्राचीन मान्यता के प्रति उग्र विरोध प्रकट करना ही सामाजिक चेतना या जागरूकता का लक्षण नहीं है। और न तो सामाजिक यथार्थ का मतलब वर्ग संघर्ष की भावना का चित्रण करना ही समझा जाना चाहिए। इस कसौटी पर परखने पर बहुत से श्रेष्ठ कवि हाथी दांत की मीनार के बाशिंदे ही प्रतीत होंगे। वस्तुतः इससे बड़ी कुत्सित समाजशास्त्री और कुछ नहीं होगी कि हम किसी कवि की रचनाओं में अपनी मान्यताओं का प्रतिफलन या अपने न्यस्त अभिप्रायों का अंकन ही ढूंढा करें। सामाजिक यथार्थ साहित्य में बहुत सूक्ष्म ढंग से अभिव्यक्त पाता है। कवि राजनीतिक की तरह मतवाद का प्रचार नहीं कर सकता और न तो समाचार संपादक की तरह किसी घटना या परिस्थिति का चित्रण ही करना पसंद करेगा। साहित्य की अपनी मर्यादा और शैली है। उस शैली में व्यक्त सामाजिक यथार्थ को समझने में शब्दों या खास प्रकार के वस्तु को ही यथार्थ मानने वालों को थोड़ा कष्ट अवश्य होगा। विरह के गीत में वैयक्तिक मन का चित्रण ही प्रमुख होता है। इसमें भोड़ा यथार्थवाद नहीं मिलेगा, किंतु समझदार व्यक्ति विरह गीतों में भी स्वस्थ और अस्वस्थ प्रवृत्तियों का भेद बता सकता है। विरहणी नायिका का अवसाद कभी इतना व्यापक होता है कि वह संपूर्ण सृष्टि को अपने दुख में दुखी न देखकर आक्रोश से भर उठती है या संपूर्ण विश्व को भला बुरा कहने लगती है। ऐसा भी हो सकता है कि विरह में पीड़ित नायिका अपने दुख में इतनी घोर निराशावादी हो जाए कि आत्महत्या करने पर तत्पर हो जाए। दूसरी तरफ ऐसी भी नायिका हो सकती है जो अपने दुख में व्यथित रहने पर भी दूसरों के दुख में हाथ बटाती है। उनका निजी दुख दूसरों के कष्टों को समझने की प्रेरणा देता है, शक्ति और उत्साह देता है। इन दोनों परिस्थितियों का अंतर बड़े सूक्ष्म विश्लेषण की अपेक्षा रखता है। ऊपर से दोनों ही चित्रणों को प्रेम वियोग कहकर सामाजिक यथार्थ का चश्मा लगाकर तिरस्कृत किया जा सकता है। विद्यापति ने प्रेम गृह के चित्रण में सर्वत्र स्वस्थ मनोवृत्ति का ही अंकन किया है। ऐसा तो मैं नहीं कहता, किंतु इतना सत्य है कि विद्यापति की राधा अपने विरह में भी निराश नहीं है और न तो वह संसार का किंचित भी अमंगल सोच पाती है। यही नहीं, जहाँ नायिका अपने विरह की पीड़ा से व्याकुलित चित्त होकर अपना नाश कर देना चाहती है, वहाँ विद्यापति उसे आश्वासन देते हुए उसके प्रिय से मिलने की आशा बधाते हैं। सुन सेज मोहि सालय रे, पिया बिन घर मोय आज, विनती करो सलोलनि रे, मोती देह अगिहर साजी, विद्यापति कवि गाउल रे, आई मिलवे प्रिय तोर। विरह के इन गीतों में जहाँ नायिका आत्मग्लानि में पीड़ित होकर हजारों तरह की परिस्थितियों की कल्पना करके अपने दुःसह दुख की भयंकरता से ऊब कर अनिष्ट की बात सोचती है, कभी उस प्रत्येक परिस्थिति में सखी के मुख से, पथिक के मुख से या स्वयं कवि मुख से आश्वासन के दो शब्द आशादायक दो बातें अवश्य कहते हैं। विद्यापति की इन गीतों को गाकर जाने कितनी पोषित पतिकाएं सुदूर कर्मरत अपने प्रेमियों पतियों के विश्लेष दुख को संभालने में समर्थ हुई होंगी। ऐसे गीतों को स्वस्थ प्रवृत्तियों का विकास न कहकर और क्या कहा जाएगा। विद्यापति जैसे दरबारी कवि ने विरहणी नायिका के दुख का चित्रण करते वक्त उसे रानी या राजकुमारी की भूमिका में नहीं रखा है, जो उनके लिए ज़्यादा उचित और उस वातावरण के अनुकूल होता। कवि ने नायिका के रूप में एक ऐसी नारी की कल्पना की है जिसके चारों तरफ शील और मर्यादा की बाढ़ लगी है, परिवार है, सासू और नर की पहरा देती आँखें हैं। ऐसी अवस्था में नायिका अपने पति से मिलने के लिए जो कुछ कहती है वह भारतीय गृहस्थिक मर्यादा के भीतर ही। विद्यापति की रचनाओं में यथार्थ के इन रूपों का बड़ा ही बारीक चित्रण हुआ है। तत्कालीन कुरीतियों आदि पर कवि ने बड़ा तीखा व्यंग किया है। अपनी आँखों के सामने होने वाली अजीब घटनाएं उन्हें आक्रोश से भर देती हैं, किंतु विद्यापति ने विडम्बना पीड़ित नायिका पर या उसके पति पर व्यंग नहीं किया है। वे समाज की उन रूढ़ियों पर व्यंग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी ही दोषी है। विद्यापति ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं करते, वे बड़े हंसमुख ढंग से वे उनके मर्म पर प्रहार करते हैं। युवती लड़की की शादी बालक पति से हो गई है, आगे क्या हुआ यह उन्हीं के मुख से सुनिए। पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तप चकुलौ हैं भिलौ हैं जननी, पहरी लेल सखी एक दक्षिण कर चीर, पिया के देखते मोर दगत शरीर, पिया लेली गोद के चलनी बाजार, हटिया के लोग पूछे के लाग तुहार, नहीं मोर देवर की नहीं छोट भाई, पुरुव लिखल छल बाल मुहमार, बाट रे बटोरिया के तुह मोरा भाई, हमारी समाध नैहर ले ले जाओ, कहुहिन बाबा के कि नए धेनु गाय, दुधवा पियाए के पोस्ता जमाई। लड़की के बाप पर कैसा तीखा व्यंग है। लड़की अपने बाप से कहती है कि अपने इस जमाई के लिए दूध पीने को गाय भिजवा दो। विद्यापति ने लड़की के मूर्ख बाप की भर्त्सना नहीं की, उसे बेवकूफ नहीं कहा और न उनका समाज के लोगों द्वारा उपहास कराया, पर व्यंग किया कितना तीखा और मार्मिक। यथार्थ की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कितनी कूटनी नारी पर लिखी कविता में हुई है। यह सत्य है कि उस कविता में आर्थिक वैषम्य या दीनता का चित्र वैसा नहीं है जैसा कि आजकल की यथार्थवादी कही जाने वाली कविताओं में होता है। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि 14वीं शताब्दी के कवि को न तो आजकल का यह बुनियादी वातावरण प्राप्त था, न उसके सामने वर्ग संघर्ष की वर्तमान परिस्थितियाँ ही स्पष्ट थी। इसी कारण इस कविता में दुख की अभिव्यक्ति है, लेकिन दूसरी तरफ से काम कला के प्रचार ने जिस प्रकार के छिछड़े प्रणय का प्रचार किया, उसमें कूटनी नारी या शिष्ट पदों में द्युति का महत्व है। यह द्युति केवल प्रेमी प्रेमिकाओं को स्वाभाविक प्रेम व्यापार में सहायता नहीं देती थी, बल्कि नागरजनों की काम वासना की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के जाल फेंक कर भोली भाली मूर्ख लड़कियों को फंसाने का भी कार्य करती थी। एक ऐसी द्युति जो अपने संपूर्ण यौवन काल को इस प्रकार के छल छद्मपूर्ण प्रेम व्यापार या व्यवसाय में व्यतीत कर चुकी है, वृद्धावस्था आने पर अपने पूर्व जीवन के प्रति विरक्ति या निराशा से भर उठती है। कुटनी औरतें न केवल पर नारी को लोभादि दिखाकर फंसाने का ही कार्य करती हैं, बल्कि स्वयं भी एक प्रकार से वेश्या का जीवन व्यतीत करती थी। विद्यापति ने एक ऐसे ही वृद्धा कूटनी का चित्रण इन शब्दों में उपस्थित किया है। हम धनी कूटनी परिणत नारी, वैसहु वास न कहो विचारी, काहू के पान काहू दियसान, कतन अकारि कैल अपमान, कय परमाद धिया मुर भेल, आहे यौवन कतय चल गेल, भागल कपोल अलक भरी साजू, संकल संकुल लोचने काजर आंजू, धवला केश कुसुम करुवास, अधिक सिंगार अधिक उपहास, पोतर थैया थन दुह भेल, गरुव नितंब कहाँ चली गेल, यौवन शेष सुखायल अंग, पाछु हेर बिरुलैत अनंग, खने खस घोघट विघट समाज, खने खन अब हकार लीलाज, बने विद्यापति रस नहीं छेओ, हसनी दे पति देव सिंह देव। वयस और स्थान का बिना विचार करके बात करने वाली मैं कूटनी वृद्धा हूँ, किसी को पान देती हूँ, किसी को इशारा करती हूँ, जाने कितने लोगों को बुलाकर मैंने अपना अपमान किया, मेरे लड़की को मेरे चरित्र के कारण जाने कितने प्रकार के प्रवादों का सामना करना पड़ा है, मेरा यौवन चला गया है, सूखे गालों को मैं अलकों से ढकती हूँ, धसे हुई आँखों को अंजन में छिपाती हूँ, धवल बालों को फूलों में से सुवासित करती हूँ, जितना ही अधिक श्रृंगार करती हूँ उतना ही अधिक उपहास होता है, यौवन के प्रतीक कूच थोथर होकर लटक गए हैं, नितंबों की गुरुता लुप्त हो गई है, यौवन शेष हुआ, अंग सूख गए, अनंग पीछे भूमि पर लौट रहा है, दुष्टों के समाज में जब भी घूंघट गिर पड़ता है क्षण क्षण में लज्जा को पुकारती हूँ पर वह दूर चली गई है। विद्यापति कहते हैं कि रस को इस तरह नष्ट करना चाहिए। विद्यापति ने समाज में कुत्सित जीवन व्यतीत करने वाली नारी का चित्रण कितने सहानुभूति से किया है। सहानुभूति ऊपर से लदी हुई नहीं है, आप उसकी आत्मग्लानी और अपने किए हुए कार्यों पर पश्चाताप की भावना के कारण अपने सहानुभूति देने के लिए विवश हैं, वह अपने चरित्र के कारण अपनी लड़की पर लगाए जाने वाले प्रवादों से दुखी है, वह जानती है कि यौवनचित नारी का यह कृत्रिम श्रृंगार उसका उपहास करता है, परंतु वह अपनी परिस्थितियों के कारण विवश है। कवि ने आर्थिक परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए भी इस ओर काफ़ी साफ ढंग से संकेत कर दिया है। विद्यापति के कृष्ण नंद राजा के राजकुमार नहीं ग्वाल थे, इसीलिए विद्यापति ने जिस वातावरण में उन्हें उपस्थित किया है वह उसी के उपयुक्त है। राधा कृष्ण पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि ऐसा मूर्ख है यह कृष्ण, कहीं कौड़ी से घोड़ा खरीद जाता है या उधार मांगने से घी मिलता है, बैठने का स्थान नहीं खाने को व्यंजन मांगता है, आज तो बड़ा मजा आया, कान्हा का मिथ्या गौरव चूर चूर हो गया, आकर पाँव के पास पुआल पर बैठ गया, बेचारा पूछने लगा शब्या कहाँ लगी है, पास में फटी हुई चटाई और मन में पलंग, हरिणियों के नाच की बात ही क्या कहना, कौड़ी पठो ले पाव नहीं घोर, घी व उधार मांग मति भोर, बाँस न पावय मांग उपाती, लोभ करासी पुरुष थिक जाती, की कहब आज की कौतुक भेली, अपदह कानक गौरव गेली, आयल वैसल पाव पुआर, सेज क कहनी पुछय विचार, उछाउन खंडत पलिया चा, और कहत कत अहिरिन ना, बने विद्यावती पहु गुणवंत, सिर शिव सिंह लखिमा दई कंत। विद्यापति के सामाजिक चेतना का परिचय एक और प्रकार से मिलता है, उन्होंने सारे अभिजात प्रयोगों के बावजूद कई स्थानों पर घूर ग्राम या लोक प्रसूत प्रयोग किए हैं, ऐसे प्रयोगों से कवि की पैंठ और बातचीत की स्वाभाविकता को ग्रहण करने की कोशिश का पता चलता है। मुहावरे और कहावत के प्रयोग में विद्यापति ने कमाल कर दिया है, खासतौर से ये प्रयोग राधा तथा अन्य गोपियों के बातचीत में दिखाई पड़ते हैं, लोक प्रयोग प्रायः स्त्रियों के वार्तालाप में ज़्यादा सुरक्षित रहते भी हैं, उदाहरण के लिए थोड़े से प्रयोग नीचे दिए जाते हैं। सखी हे बूझल कान गुआर, पितरक टाण काज दो कावोन लहो, ऊपर चकमक सार, कान बिल्कुल गवार है यह मैंने आज जाना, पीतल का टाण यानी आभूषण, ऊपर से सोने का मुलम्मा, यह चमक दमक से कोई काम सरने वाला रहे, तो हर वचन कूप धस जोरल, ते हम गेल हु अबाटे, चंदन भरम सिमर आलिंगल, साल रहल ही कांटे, तेरी झूठ बातों में पढ़कर मैं कुएं में कूद पड़ी, मेरा आँच चली, चंदन के भ्रम से मैंने सिंहुण की छाती से लगाया, हृदय में कांटे साल रहे, सुजन का वचन खोट नहीं लाग, जिन दृढ़ करो आल का दाग प्रियजन के कड़े वचन में कभी कभी नहीं जाता, जैसे अच्छी तरह लगाया हुआ आलता का दाग जल्दी नहीं छूटता। माननी गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस मूर्ख ने कमल का अभिनव पुष्प नीम के दोने में फेंक दिया, जो वहीं सूख कर बिखर गया। नीम के पत्ते का दोना प्रयोग देखिए, इसमें कटुता व तिक्त का भाव है, साथ ही कमल फूल नीम के दोने में फेंकने का अर्थ गुण को न समझना भी है। अभिनव एक कमल फूल सजनी, दोना नीम का डार, सेव फूल ओतही सुखायल सजनी, रसमय फूलक निवार। गोपी एक रात का अनुभव सुनाते हुए गवार कृष्ण की जो विशेषताएं बताती है वह इस प्रकार है कि कहब हे सखी रात का बात, मानिक पड़ल कुबानिक हाथ, कांच कंचन नहीं जाने मूल, गुंजा रतन करे समतूल, तन्हे सौ कहाँ पीरीत रसाज, वानर कंठ की मोतिम माल, भने विद्यावते एह रस जान, वानर मोह के सो भय पान। विद्यापति ने लोक प्रचलित मुहावरों के प्रयोग से भाषा को एक नई शक्ति दी तथा अपने कथ्य को अधिक जीवंत और लोक जीवन संप्रक्त बनाया। मुहावरों के साथ ही उन्होंने लोक जीवन के अन्य तत्व भी ग्रहण किए। उदाहरण के लिए उनके गीतों में कई स्थानों पर प्रेम विरह आदि के सूक्ष्म परिस्थितियों में लौकिक अंधविश्वास, भूत प्रेत, टोना टोटका तथा अन्य प्रकार के रूढ़ विश्वासों का प्रयोग हुआ है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने विश्वासों को हानिकारक या अवैज्ञानिक समझकर उनका प्रतिकार किया, ऐसा कहने का वह युग भी नहीं था, किंतु उन्होंने अपनी सहजता से ही इनका विरोध कई विडंबना दिखाई है। उदाहरण के तौर पर उनके गीत में एक प्रेमिका गोपी अपने सास को धोखा देने के लिए भूताविष्ट का अभिनय करती है। कृष्ण एक उज्जैन बनकर आते हैं और अकेले में मंत्र प्रयोग की आज्ञा लेकर घर के लोगों का उसके पास से हटा देते हैं। गोपी का रोग दूर हो जाता है। निर्जन होय मंत्र जब झाड़िए, तब ये होये भाल, ईत सुन जटिला घर दो लावल, निर्जन दोह एक ठाम, सब जन निकसल बाहर बैसल, पुरल कान मन काम, बहुखन अतन मंत्र पढ़ि झारल, भागल तब से हो देव, देव दयासिन घर सय निकलल, चतुरी मुझब केवा। इस प्रकार के भूत प्रेत के बहाने के पीछे कितना सत्य होता है, क्या क्या अभिप्राय होते हैं, उनका एक व्यंग्यात्मक संकेत यहाँ विद्यापति ने दिया है। राधा के वीरा प्रसंगों में भी इसी प्रकार के लौकिक विश्वासों का प्रयोग किया गया है। इसके कारण ऐसे वर्णन ज़्यादा मार्मिक और हृदय स्पर्शी हो सके। जैसे कृष्ण के वियोग में राधा का आत्मग्लानिपूर्ण यह कहना कि क्या मैं शाम का एकांकी तारा हूँ या भादव चौथ का चाँद, जो कलंक के डर से प्रभु मेरी ओर देखना तक नहीं चाहते। पंक्तियां पीछे राधा के विरह के प्रसंग में उद्धृत की जा चुकी हैं। विद्यावती के काव्य में ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं है जहां वे अस्वस्थ और कई रूपों में नैतिक अनैतिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। रति के विभत्स वर्णन, विपरीत रति के अश्लील वर्णन तथा विवृत आलिंगन आदि के प्रसंग स्वस्थ प्रवृत्तियों के विरोधी ही कहे जाएंगे। यद्यपि कहीं कहीं कवि ने ऐसे वर्णनों को रूढ़ अपस्तुतों की आड़ में ढकने की कोशिश की है, किंतु ऐसे प्रसंग भी उद्देश्य के स्वस्थ्यपन के कारण कुरुचिपूर्ण उन्नीत होते हैं। उदाहरण के लिए पदावली का 172वां पद, सखी है कहब किंतु नहीं फूर, तमाम अलंकरण के आवरण के बावजूद अपनी नग्नता को नहीं छिपा सका। विदग्ध विलास के प्रायः सभी पद इस दोष से पीड़ित हैं। इस प्रकार के वर्णनों के पीछे कैसी मनोवृत्ति काम कर रही थी, इस पर पीछे विस्तार से विचार हो चुका है, उसे यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। दृष्टिकूट पद भी इस अस्वस्थ मनोवृत्ति के परिचायक हैं, हालांकि यह वस्तुगत नहीं शैलीगत दोष है। डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार संपादित विद्यापति की 194वें से लेकर 200 संख्या वाले पदों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे कवि ने महज पाठक को परेशान करने के लिए ही वे पद लिखे हैं। इन सभी पदों के नीचे मजुमदार ने लिखा है कि इसका अर्थ नहीं मिला, यह रूढ़ परिपाटी है, इसमें शक नहीं। संस्कृत में भी इस प्रकार के दृष्टिकूट पद बहुत लिखे गए। सूर ने तो इसमें कमाल ही कर दिया, कारण जो कुछ भी हो या प्रवृत्ति है अस्वस्थ कर ही।